Eradama Sava Kunja Behare Eradama Sava Kunja Behare Pijana bala bha vala dhari Gopi jana bala bha vala dhari Jai Radha Madhava Nyabbihare Jai Radha Madhava Nyabbihare Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Thira Vannachare Jamna Thira Vannachare Jai Radha Madhava Jabbihare Jai Radha Madhava Jabbihare Gopi jana bala bha vala dhari Gopi jana bala bha vala dhari Sodanandana braja jana ranjana Sodanandana braja jana ranjana Jamna thira vannachare Jai Radha Madhava Jabbihare Jai Radha Madhava Jabbihare Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Dvangashwa Abhechana Bhakti Nanda Swami Suprabhupada Maharaj Ki Shri Shri Gonathai Ki Shri Shri Radha Partha Sati Lalda Vishaka Ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. The two Russian Matajis also. Mata Mangala, can you can you give the FM to the Russian, to that Mataji there? There's one devotee here from Sri Lanka. Give one to him also. You sit in the back, they'll give you a FM for translation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा श्लोक है? 131। ये बोर्ड में लिखा है 131। हाँ लिखा है बोर्ड में, सर्वान् वेदान् सत्रे कृष्णेरां। ओ करे कृष्णेरां अभिधानां मुख्य रेति चारी कैला लक्षणा व्याख्यानम्। सर्व वेद सूत्रे करे कृष्णेर अभिधानम् मुख वेदि चादि कैला लक्षण व्याख्यानम्। सर्व वेद सूत्रे करे कृष्णेर अभिधानम् मुख्य वेति चादि कैला लक्षण व्याख्यान। सर्व वेद सूत्र करे कृष्णेर अभिधान मुख्य वेति चादि कैला लक्षण व्याख्यान।
सर्व वेद सूत्रे करे कृष्णेन अभिधान मुख्य वृत्ति छाड़ी कैला लक्षणा व्याख्यान।
माता जी अनुवाद
मेरे पीछे बोले, सारे वैदिक सूत्रों तथा साहित्य में भगवान कृष्ण को ही समझना होता है, लेकिन शंकराचार्य के अनुयायियों ने अपनी अपरोक्ष व्याख्याओं से वेदों के असली अर्थ को ढक दिया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कहा गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वैदिक साहित्य में जिसमें रामायण पुराण तथा महाभारत सम्मिलित हैं, आदि से लेकर अंत तक तथा बीच में भी केवल हरि की व्याख्या ही की गई है।
ओम ज्ञात विरंदस्य ज्ञानञ्जनाश्लाक्या चक्षुरन्मिलितानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सगराजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतम्। कृष्णापदान् सहगना ललितम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गो राधा कंत नमोस्तुते सप्ता कचला गौरांगी वंचाकल्प जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण सर्व वेद सत्व करे कृष्ण अभिधान मुख्य विचारि कैल लक्षण व्याख्यान तो इस श्लोक का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु जी कर रहे हैं। इस अध्याय में पीछे के श्लोकों में आपने पढ़ा कि जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए थे तो गिव हिम ऑल्सो अ ट्रांसलेशन वृंदावन। जब चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी आए थे तो उनके दो प्रिय भक्त वहां थे, एक का नाम था चंद्रशेखर और दूसरे का नाम था तपन मिश्रा। महाप्रभु जी चंद्रशेखर के घर में ठहरे थे। वो तपन मिश्रा उनके भक्त थे बांग्लादेश से, जो कि महाप्रभु जी को मिले थे और उनसे पूछा था कि ये बताइए जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और महाप्रभु ने कहा कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तो फिर वो बांग्लादेश छोड़कर बनारस आए। तो ये जो भक्त जब बनारस में थे वो मायावादियों के द्वारा महाप्रभु जी की आलोचना के विषय में आलोचना सुन रहे थे। बकायदा आलोचना किस विषय पर थी? मायावादियों का यह सिद्धांत था, मायावादियों का विचार था कि सन्यासी को केवल वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। और महाप्रभु जी ने जो कीर्तन मंडली शुरू की है पागलों जैसे नाचना गाना, ये शोभा नहीं देता सन्यासी को। आप लोगों का अभ्यास होगा कि कई बार जब हम लोग हरिनाम में जाते हैं कई लोग इसका साथ देते हैं और कई इसका विरोध भी करते हैं। खास करके जब आप पश्चिम देश में जाओ हरिनाम लेकर, तो ये भारतीय लोग आते हैं कई बार, क्या तुम हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हो ऐसे नाच के गा के। हम कहते हैं हम तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो ये मायावादी सन्यासी, वो इनके गुरु थे प्रकाशानंद सरस्वती, इन्हें लगा कि इस सन्यासी के कीर्तन मंडली से ये शोभा नहीं देता कीर्तन करना। और इन सबको ये भी पता था कि ये सन्यासी बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक नामों में एक नाम क्या है? निमाई पंडित। पंडित का अर्थ है जो कि बड़ा विद्वान हो, खास करके संस्कृत भाषा में वैदिक साहित्य में। तो तपन मिश्रा और कीप द गार्लैंड्स प्रभु, आई नीड द गार्लैंड्स लेटर। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आए महाप्रभु जी को मिलने। उनसे उन्होंने कहा कि उनसे ये कहा कि हम आपके विषय में इतनी आलोचना सुन रहे हैं और हमारे से ये बेइज्जती आपकी सह नहीं जाती। हम चाहते हैं कि आप इन सन्यासियों को मिलो। तो महाप्रभु जी वैसे तो मायावादियों से नहीं मिलते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायावादियों के विषय में ये कहा है, मायावादी किसे कहते हैं? कई बार लोग सोचते हैं मायावादी कहते हैं जो व्यक्ति माया में हो। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार मायावादी उसे कहते हैं जो भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, जिसकी भक्ति की विधियों में श्रद्धा नहीं हो, और जो ये सोचता है कि जब परम भगवान प्रकट होते हैं वो साधारण व्यक्ति के समान बन जाते हैं। तो मायावादी जब भगवान के आर्य विग्रह का दर्शन भी लेने आते हैं तो ये स्वीकार नहीं करते स्वयं भगवान है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते आर्य विग्रह के रूप में। वो जब आर्य विग्रह को देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये लकड़ी की है, और ये मूर्ख लोग कह रहे हैं कि इसमें भगवान है। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर के निवेदन पर महाप्रभु जी तैयार हो गए उनके घर में आने के लिए। और इस महाराष्ट्र का ब्राह्मण था, उसने इन मायावादियों को भी निमंत्रण दिया उनके घर में आने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी वहां पहुंचे उस ब्राह्मण के घर में, तो ये मायावादी सन्यासी जो थे ये सब ऊंचे मंच पर बैठे हुए थे, और महाप्रभु जी जब वहां पहुंचे तो वो ऊंचे मंच पर नहीं गए, पहले उन्होंने अपने पैरों को धोया और फिर उसी स्थान में बैठ गए जहां की पैर धोए थे। एक रूप से देखा जाए वो तो गंदा स्थान माना जाता है कि नहीं, जहां पैर धोते हो। बाकी सन्यासी सब ऊंचे मंच पर थे और मायावादी और महाप्रभु जी कहां बैठे, जहां के लोग पैर धोते हैं। तो मायावादी ने कहा कि आओ ऊपर बैठने के लिए मंच पर हमारे साथ। पर महाप्रभु जी ने सन्यास क्यों ग्रहण किया था, इसी अध्याय में पिछले श्लोकों में कहा गया है कि महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण किया था मायावादियों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी जब पृथ्वी पर थे और जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हर प्रकार के व्यक्ति को भक्ति की शिक्षा के प्रति आकर्षित किया। जैसे आप एक कथा पढ़ते हो, एक समय महाप्रभु जी का की चर्चा हुई थी बुद्धिस्टों के गुरु के साथ, और महाप्रभु ने बुद्धिस्टों के गुरु के सिद्धांत को हरा दिया था, और उनके जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि हमें बदला लेना चाहिए। उन्होंने हमारे गुरु को की बेइज्जती की, हराकर हमें बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें सड़ावा खाना, बासी सड़ावा खाना को एक पीतल की थाली में डालकर वो ले गए महाप्रभु जी के पास, और महाप्रभु जी से कहा हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं आपके लिए खास। जैसे वो पीतल की थाली महाप्रभु जी को पहुंचा रहे थे, ऊपर से एक बाज आई और बाज ने वो बासी सड़ावा खाना तो खा लिया, और वो जो पीतल की थाली थी उनके हाथों से लेकर गिरा दिया उनके गुरु के सिर पर। जब वो भारी पीतल की थाली उनके गुरु के सिर पर गिरी तो गुरु जी तो बेहोश हो गए, और जब गुरु जी बेहोश हो गए तो ये बुद्धिस्टों के मन में ये पछतावा उत्पन्न हुआ कि हमारे दोषी विचारों के कारण अब हमारे गुरु का ये परिणाम हुआ है। तो शिष्यों ने महाप्रभु जी से अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि किसी प्रकार से ये विनती है आपसे कि आप हमारे गुरु जी को फिर से जीवित कर दो। तो महाप्रभु जी ने कहा तुम जाओ अपने गुरु के कान में हरि नाम सुनाओ। और उन्होंने गुरु के कानों में हरि नाम सुनाया जिसके माध्यम से गुरु जी होश में आए, गुरु जी भी वैष्णव बने, उनके साथ जो साथी थे सब के सब क्या बन गए वैष्णव बन गए। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी ने जो मायावादी थे उनको भी प्रभावित किया और सबको भगवान का भक्त बनाया। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी गए थे ब्राह्मण के घर में और वो बैठे जहां की लोग पांव धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले, तो मायावादियों के जो गुरु थे प्रकाशानंद सारस्वती, उसने सोचा कि वो सब पहचान गया था कि महाप्रभु जी कोई साधारण सन्यासी नहीं है। जैसे कि आदि लीला में पढ़ चुके हो कि माया महाप्रभु जी के शरीर में 32 खास सिम्टम थे। दिलंबरा चक्रवर्ती जो कि महाप्रभु जी के ससुर थे, एक रूप से महाप्रभु जी के पिता जो थे उपेंद्र मिश्रा, उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। तो जगन्नाथ मिश्रा शुरू में बांग्लादेश में रहते थे। अगर आज भी आप बांग्लादेश जाओ, बांग्लादेश में कई प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ के स्थान है और इन तीर्थ के स्थानों में मां प्रभु जी उनके भक्तों ने अपनी अनेक लीलाएं प्रकट की थी। तो जगन्नाथ मिश्रा नादिया बांग्लादेश छोड़कर आए थे नादिया में रहने के लिए और वहां उनके पिता उपेंद्र मिश्रा मिले एक बहुत बड़े जोशी के साथ जिसका नाम था नीलंबरा चक्रवर्ती। और फिर उन्होंने उनकी बेटी का विवाह कराया उपेंद्र में जगन्नाथ मिश्रा से। तो जगन्नाथ मिश्रा के पिता का नाम था उपेंद्र मिश्रा। तो चैतन्य महाप्रभु जी शुरू से ही बड़े विद्वान थे। तो प्रकाशानंद सारस्वती महाप्रभु जी के हाथ को पकड़कर ले जाना चाहते थे मंच के ऊपर बिठाने के लिए, पर उससे पहले महाप्रभु जी ने सोचा मुझे अपनी दिव्य लीला प्रकट करने दो। तो बैठे थे जहां पैर धोते हैं वहां उन्होंने अपने चेहरे से लाखों सूर्य के प्रकाश को प्रकट किया अपने देह से। और जब ये मायावादी सन्यासी जो ऊंचे मंच पर बैठे थे जब उन्होंने देखा ये प्रकाश जिसकी तुलना लाखों सूर्य की रोशनी से की जा सकती है, वो ये देखकर समझ पाए क्या कि ये सन्यासी जो है साधारण सन्यासी नहीं, ये शायद स्वयं नारायण हो सकता है। वैसे तो मायावादी इसका सिद्धांत क्या है, तुम नारायण हम सब नारायण है कि नहीं। तो उन्होंने वो समझ गए ये कोई खास सन्यासी है, ये स्वयं नारायण हो सकता है। तो फिर प्रकाशानंद सारस्वती ने पकड़कर ले आए। उससे पहले मैं कह रहा था कि नीलंबरा चक्रवर्ती ने जबकि भगवान ने अपनी बाल लीला प्रकट करना आरंभ किया था, जैसे कि सबसे पहली बाल लीला क्या थी, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने देखा कि उनके घर में फर्श में वो दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं जो कि भगवान के चरणों में हैं। और जब उन्होंने वो देखा तो पहले तो वो सोचने लगे कि हमारे घर में जो दामोदर गोपाल की मूर्ति है शायद उसने चलना शुरू कर दिया है। फिर उसकी माता अपने बेटे को एक दिन दूध पिला रही थी तो उन्होंने देखा अरे ये झंडे मछली ये सब जो निशाने हैं ये तो सचमुच ही मेरे बेटे के पांव में पैरों में है। तो उन्होंने अपने पिता से कहा जिन्होंने उनकी जन्मपत्री बनाई और उन्होंने ये भी कहा कि ये बेटा जो है आपका पूरे विश्व को संभालेगा, और इसलिए उनका एक नाम क्या था, विश्वंबर। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ये अपने दिव्य अद्भुत लीला के द्वारा सारे मायावादियों को प्रभावित किया कृष्ण भक्ति के प्रति, और फिर महाप्रभु जी ने हरि नाम की महिमा का वर्णन किया। तो महाप्रभु जी और वेदांत और इन मायावादियों का की चर्चा आरंभ हुई, और ये जो आज का श्लोक है ये महाप्रभु जी का इसका उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि यहां इन श्लोकों में महाप्रभु जी मायावादी सन्यासियों को ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार उनका जो सिद्धांत है उसमें क्या है, कमी है। वो ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार शंकराचार्य ने जो वैदिक साहित्य है उसका असली जो अर्थ है वो छुपा दिया है या बदल दिया है। जैसे कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, सारे वैदिक सूत्रों तथा साहित्य में भगवान कृष्ण को ही समझना होता है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, विदेश सर्वे रहे में वेदयो वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम, सारे वेदों के द्वारा मैं जाना जाता हूं। तो वैदिक साहित्य का असली संदेश क्या है कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वासुदेव परा वेद, सारे वैदिक साहित्य का असली लक्ष्य क्या है कि आप परम भगवान को समझ पाओ। तो वैदिक साहित्य में बड़े स्पष्ट रूप से ये स्थापित होता है क्या, कृष्ण त्यु भगवान स्वयं, और ब्रह्मा जी ने क्या कहा है इस विषय पर, ईश्वर परम कृष्ण। भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है, प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन किया गया है, और ये स्थापित किया जाता है क्या कि इन सब का पहले ये सब अवतार प्रकट हुए कहां से, कृष्ण भगवान से। तो सारे वैदिक साहित्य का निर्णय है कि कृष्ण भगवान है परम भगवान, और भागवतम के प्रथम स्कंद में ये भी बताया गया है कि परम भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो तीन अलग स्टेजेस में, ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्द थे, ब्रह्मान उसे ज्यादा ऊपर है परमात्मा, और उससे ऊपर है भगवान। भगवान रूप में आप स्वीकार करते हो कि भगवान का जो ध्येय है बिल्कुल दिव्यम है, भगवान अपने आप को किसी रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, चाहे मछली के रूप में हो या किसी पशु के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, और भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सारे वैदिक साहित्य में ये स्पष्ट बताया गया है कि कृष्ण भगवान की सेवा और भक्ति योग ही असली उद्देश्य है, पर आगे वो कहते हैं क्या, लेकिन शंकराचार्य के अनुयायियों ने अपनी अप्रोक्ष व्याख्याओं से वेदों के असली अर्थ को ढक दिया है। तो जो मायावादी हैं वो किसी न किसी रूप से, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड जगलरी, वर्ड जगलरी कहेंगे शब्दों के जाल से जो असली अर्थ है वैदिक साहित्य का उसको छुपा दिया है। और इसलिए आप क्या देखते होगी कि कई लोग इम्पर्सनलेस निराकारवादी बन गए हैं। तो इसी विषय पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, वेदे रामायण चाहे वह परम भारत तथा, चाहे रामायण हो पुराना हो महाभारत हो, शुरू से अंत तक उनका निर्णय क्या है कि हरि ही स्वयं परम भगवान है। आप भगवद गीता पढ़ते हो, भगवद गीता के हर पेज में क्या, हर श्लोक के साथ लगभग क्या लिखा गया है, श्री भगवान उवाचा, जिसका अर्थ है परम भगवान बोल रहे हैं। तो मायावादियों के कई विचार हैं। मायावादी एक कई बार कहते हैं कि अगर भगवान हर कण कण में है तो उनका जो असली रूप है वो कैसे संभव हो सकता है। वो कहते हैं गॉड इज ऑल प्रवेसिव, हाउ कैन गॉड हैव हिज ओरिजिनल फॉर्म। तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी ने कहा है सन डिस्क, सूर्य की रोशनी आप हर स्थान में अनुभव कर सकते हो, पर जब भी सन डिस्क का सूर्य का रूप है। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, साधारण स्थिति में अगर आप एक कागज को लोगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ोगे तो जो ओरिजिनल कागज है इट विल बी लॉस्ट। पर भगवान के विषय में हालांकि वो कण कण में है, हर स्थान में उपस्थित हैं, जब भी उनका जो दिव्य रूप है वो वैसे ही रहता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। तो वैदिक साहित्य का निर्णय क्या है कि परम भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और उनका स्वरूप है, वो अपने आप को आर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जब आपको ये सूचना मिलती है कि भगवान प्रकट हुए थे नरसिंहदेव भगवान के रूप में, हम ये नहीं कहते ये कल्पना है। क्यों? क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं कि भगवान अपने आप को आदि पशु पुरुष के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जब आपको ये सूचना मिलती है कि भगवान ने वामन देव के रूप में पूरे पृथ्वी को ढक दिया था अपने एक कदम से, और दूसरे कदम से पृथ्वी तक आकाश तक जो स्थान था सबको ढक दिया था, हमें कोई हैरानगी नहीं होती। जब आप पढ़ते हो भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए थे, हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस प्रकार से सारे मायावादियों को उपदेश दिया और सारे मायावादियों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि हजारों की संख्या में सारे मायावादी क्या बन गए, वैष्णव बन गए। और चैतन्य महाप्रभु जी जहां भी जा रहे थे हजारों भक्त उनके आगे पीछे आते थे। बनारस में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है विश्वेश्वरा का, जहां जिसमें शिव जी की उपासना की जाती है। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर चैतन्य चरितमृता इज कॉल्ड विश्वेश्वर। तो चैतन्य महाप्रभु जी रोज इस मंदिर में जाते थे दर्शन के लिए और उनके साथ हजारों भक्त आते थे दर्शन के लिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने हर सारे सन्यासियों को क्या कर दिया, ऊंचा कोटि का वैष्णव बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो जो मायावादी सिद्धांत है एक प्रकार का बड़ा अपराध है। प्रभुपाद जी कहते थे मायावादी सिद्धांत के अनुसार भगवान क्या अंधे हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं। वो कहते हैं आप बोल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आपको देख नहीं सकते। भगवान ईश्वर श्री ईश्वर परमेश्वर में कहा गया है तदे जति तद नाय जति तद दूरे तद वंते के, भगवान चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, भगवान दूर भी हैं और पास भी हैं, भगवान हर चीज के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो आप कहोगे कैसे संभव है, एक शब्द में आप कहते हो चल सकते फिर कहते हो नहीं चल सकते, आपके सिद्धांत में कुछ कमी दिखती है। तो भगवान चल भी सकते और नहीं भी चल सकते। जो मायावादी शिक्षा से प्रभावित हैं उनकी दृष्टि से भगवान नहीं चल सकते, और जो भगवान को उनके दिव्य रूप में स्वीकार करते हैं उनके लिए भगवान चल भी सकते हैं। भगवान दूर है और पास भी है, जो भगवान की पूजा उपासना कर रहा है वो जानता है कि भगवान हरे के हृदय में उपस्थित है, किस रूप में? परमात्मा के रूप में। और परमात्मा के रूप में भगवान हर कार्य के साक्षी बन रहे हैं और हमें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो भगवान पास भी हैं। परमात्मा कितनी दूर है आपसे? बिल्कुल पड़ोस में ही। पर भगवान दूर भी है। किन के लिए दूर है? जो कि भक्ति योग का स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, आपने अगर नाक को हाथ लगाना है तो सरलता से आप ऐसे लगा सकते हो, पर आपको नहीं, हमें सीधा रूप से नाक को हाथ नहीं लगाएंगे। तो आप हाथ को ले जाओ सिर के पीछे नाक तक पहुंचाने के लिए, तो बड़ा लंबा रास्ता है, कठिन रास्ता है कि नहीं? आज आपको प्रसिद्ध योगी बनना पड़ेगा करने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान पास भी है और दूर भी है। जो भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं उनके लिए भगवान निकट में है, पड़ोस में है। जो कि ब्रह्मांड परमात्मा के मार्ग से चलना चाहते हैं उनके लिए भगवान बहुत दूर है। बहुत गहरी तपस्या का पालन करने की आवश्यकता है। भगवान अंदर भी है बाहर भी है। तो जो भक्ति योगी हैं वो स्वीकार करते हैं कि भगवान अपने आप को अपने दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा है कि मायावादी वो है जो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करता, जो ये नहीं स्वीकार करता कि भगवान किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, और जो भक्ति योग की विधियों में श्रद्धा नहीं रखता। भक्त जो मायावादी है वो कहते नहीं ये भक्ति योगों का हरि नाम का ये सब बेकार का है, तो इसको स्वीकार नहीं करता, उसे कहा जाता है मायावादी। और महाप्रभु जी ने क्या कहा? मायावादियों की संगत से हमें दूर रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत जी का एक और नाम था नरसिंह गुरु, और कहा जाता है कि वो इतने बड़े प्रचारक थे कि अगर वो सड़क की बाएं तरफ में चल रहे होते थे तो मायावादी जो थे एकदम दाहिने तरफ हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने सारे मायावादियों के सिद्धांत को हराया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने यहां क्या किया है? सारे मायावादियों को वैष्णव बना दिया। चैतन्य महाप्रभु जी की। और इसी अध्याय में आपने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथियों ने भक्ति के भंडारे को खोल दिया, तोड़ दिया। भंडारा के भंडार जैसे कोई कीमती वस्तु हो तो आप उसको सेफ में रखते हो, तो ये चैतन्य महाप्रभु उनके साथियों ने ताला तोड़कर उस भंडारे को बांटा खुले रूप से। और कहा गया है कि जितना बांटा उतना उस क्या ट्रंक खजाना, उसने वो खजाना और भी भर गया। साधारण स्थिति में आप अगर कुछ बांटो तो खजाना खाली हो जाता है, पर चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही खजाना बांट रहे थे, वो खजाना और भरते गया। मतलब ये है कि आप जितना प्रचार करोगे उतनी और शक्ति भगवान देंगे आपको प्रचार करने के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए अभी हमने बहुत प्रचार कर लिया, बस जितना प्रचार करोगे उतना भगवान और शक्ति देंगे प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। हरे कृष्णा।